Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। जिंदगी में सकारात्मक विचार होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और वो तभी ही पॉसिबल है जब आप जिंदगी को संयम के साथ जिए। कई बार जिंदगी में हम सोचते हैं कि मर्यादा हमें बांध कर रख रहा है, लेकिन रियलिटी तो ये है दोस्तों कि यही मर्यादाएं हमें सही इंसान और सही विचार और सही राह ढूंढने में मदद करती है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं BKMP अग्निहोत्री जी से, आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो।
ओम शांति
ब्रदर, हमने पिछले एपिसोड में जाना कि कुछ ऐसी मर्यादाएं होती हैं, कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं, इनेट वैल्यूज होते हैं जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने में और सही राह पर चुनने में और उस पर बढ़ने में मदद करती है। पर कई बार ऐसा होता है भाई जी कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही रास्ता कौन सा है। कई बार हमें पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा जिंदगी में मर्यादा में जीने से रोकता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ यंगस्टर्स फेस करते हैं, कई बार बुज़ुर्ग भी फेस करते हैं, कई बार बच्चे भी फेस करते हैं। आजकल तो नेचुरल हो गया है पीयर प्रेशर के बीच में अपनी खुद की वैल्यूज़ को खो देना। ऐसे में अपने आप को सही राह पर चलाना कैसे पॉसिबल है?
बहुत सिंपल है, मर्यादाओं में रहकर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कहते हैं, तो उसका मतलब यह है कि मर्यादाओं में रह के पुरुषों में उत्तम इंसान। तो हमें उत्तम बनना है, कनिष्ठ बनना है या उससे भी नीचे जाना है, यह हमारा अपना डिसीजन है। सिचुएशंस आती हैं, आएंगी, आती रहेंगी, पहले भी आई, चली गई। सिचुएशन कोई भी आती है, हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, उससे सीख के हमने आगे बढ़ना है। मर्यादा अनुसार, नियम अनुसार, संयम में रहकर। तो असंयमी व्यक्ति हमेशा नुकसान में रहता है, असंयम इंसान को विनाश की ओर ले जाता है और संयम आदमी को विकास की ओर ले जाता है। अब हमारा चॉइस है कि हमें विकास की ओर जाना है। विकास में ओर जाने के लिए हमें नियमों का पालन करना, मर्यादाओं में रहना बहुत जरूरी हो जाता है। कोई भी इंसान ले लो, आज देखो बहुत बड़े जो इंसान बने हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ के देखो, किसी भी स्टेट्समैन बहुत बड़े इंसान की लाइफ हिस्ट्री पढ़ के देखो, उन्होंने उनके अंदर बहुत करुणा थी, बहुत वैल्यूज थी, ऑनेस्टी थी उनके अंदर, ट्रुथ थी, सच्चाई थी, और उसको लेके वो आगे बढ़ते चले गए और एक बहुत छोटे इंसान से बहुत बड़े इंसान बन गए। कितनी एग्जांपल्स है ऑल ओवर वर्ल्ड, भारत में ही देख लो हमारे कितनी। किसी भी एक पर्सनालिटी को ले लो, स्वामी विवेकानंद ले लो, कहाँ तक दुनिया को हिला दिया उन्होंने अपने कैरेक्टर से, अपनी वैल्यूज से, मर्यादाओं में रह के। मर्यादाओं के ऊपर उन्होंने कितना बोला, एक मर्यादा आपको कहाँ तक लेके जा सकती है।
सही बात।
इसी तरह मदर टेरेसा ले लो, मदर टेरेसा कैसे बन गई, मदर बन गई ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड की मदर बन गई। अब देखिए वो मदर कैसे बन गई, कुछ वैल्यूज के कारण, मर्यादाओं में रहने के कारण, आज आश्रम ऑल ओवर वर्ल्ड है उनके। तो ये बहुत सारे, एक नहीं ऐसे हजारों हैं जो सिर्फ अपनी मर्यादाओं के बेस पे आगे बढ़े हैं। आपको जो दूसरे मर्यादाओं के अगेंस्ट चलने वाले लोग हैं उनका हाल आपने देखा है क्या हुआ, चाहे आप वो सैंडलवुड स्मगलर ले लो, वीरप्पन मर्यादाओं के गेंस चला, क्या हुआ। किसी भी ऐसे बड़े टेररिस्ट को ले लो, क्या हुआ, गोली के शिकार हो। तो जो ज्यादा है मर्यादाओं का, जितना ज्यादा उल्लंघन करते हैं उतना ज्यादा है उनका नुकसान होता है।
ब्रदर, संयम का दूसरा पर्सपेक्टिव होता है डिसिप्लिन।
यस,
मैंने नोटिस किया है कि सक्सेसफुल जो होते हैं जिंदगी में वो अपने कुछ डिसिप्लिन के टारगेट्स रखते हैं जिसे वो हर दिन टिक करते हैं कि ये सर्टेन चीज़ें मैंने की तो मैं सही दिन बिता रहा हूँ या बिता रही हूँ। डिसिप्लिन कितना ज्यादा जरूरी है? सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ संयम और डिसिप्लिन के बीच में कनेक्शन क्या है।
संयम और डिसिप्लिन बेसिकली तो देयर दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं।
अच्छा,
तो नियम के ऊपर चलना ही हम संयम में कहते हैं।
अच्छा,
जब हम नियम पे चलते हैं तो मींस वी आर फॉलोइंग संयम, हम उस पे अंदर चल रहे हैं। तो ऐसे ही देखो, इंसान जब भी कोई नियम तोड़ता है, इंसान क्या इवन जानवर भी जब कोई नियम तोड़ता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कुरंग मतंग पतंग भृंग मीणा अतः विरोध पंचा, तो ये पांच जानवर ऐसे हैं जो अपनी एक कमी के कारण, सिर्फ एक वीकनेस के कारण अपनी जीवन लीला खत्म कर लेते हैं।
करेक्ट।
तो वो अगर संयम में रहें, उनका तो खैर ब्रेन डेवलप नहीं होता इतना, बुद्धि इतनी नहीं होती, जानवर को जो सिखाओ थोड़ा सीख सकता है लेकिन वो मल्टीप्लाई या कैलकुलेट नहीं कर सकता। तोते को बोलो बोलो दो और दो चार, वो बोल देगा दो और दो चार। तोते को बोलो दो और दो पांच, वो दो और दो पांच ही बोलेगा, वो अपने आप गलत नहीं कहेगा, नो दिस इज रॉन्ग कभी नहीं कह सकता वो, बुद्धि उसके पास वो नहीं है। वो इंसान के पास है। इंसान सब जानते हुए भी गलतियां करता है, और जानवर को ना पता हुए भी गलती, अगर उसको पता नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो सिर्फ एक छोटी सी अपनी कमजोरी के कारण अपनी जीवन खत्म कर लेता है। जैसे कुरंग बताया मैंने आपको, कुरंग होता है हिरण, और हिरण देखो आप चिड़ियाघर में जाते हो देखते हो कितना अच्छा लगता है, क्लांचे मारता है, जंप मारता है, नाचता है, लोगों को अच्छा लगता है, उसकी वैसे भी स्किन वो बहुत अच्छी होती है, दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है, और वो उसका छोटा बच्चा तो और भी खूबसूरत लगता है, लेकिन उसकी सिर्फ एक कमी। अब जंगलों में जब लोग उसको पकड़ने जाते हैं, बड़ा सिंपल मेथड है उसको पकड़ने का जो लोग अपनाते हैं, जो शिकारी लोग होते हैं, उसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, वो बंसुरी बजाते हैं, और हिरण बंसुरी का बहुत दीवाना होता है, वो जहां से धुन सुनता है, बंसुरी की धुन आ रही है, वो उस तरफ भागा चला जाता है ब्लाइंडली, एकदम जैसे पागल हो जाता बंसुरी की धुन में। हालांकि कोई बुरी चीज नहीं है, म्यूजिक को अच्छी चीज है, इंसानों को भी अच्छा लगता है, जानवरों को भी अच्छा लगता है, बहुत से जानवर म्यूजिक पसंद करते हैं। तो वो उस तरफ भागा चला जाता है, शिकारी ने जाल बिछाया होता है, वो जाल में फंस जाता है और उसकी लीला खत्म हो जाती है, उसको मार देते हैं अपने शिकार के लिए। तो देखिए, एक छोटी सी कमजोरी अगर हम सोच के देखें, इंसान के अंदर कितनी कमियां और कमजोरियां, गिनती करने लगे, और वो तो कमी भी बहुत छोटी सी है, लेकिन समझ ना होने के कारण वो बेचारा फंस जाता है। इसी तरह मतंग, मतंग होता है हाथी, तो हाथी की भी एक छोटी सी कमी, जिसने हाथी को पकड़ना होता, आपको पता हाथी का दांत बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा बिकता है, तो उसके दांत के लिए हाथी को मारते हैं या पकड़ते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत बड़ा खड्डा बना लेते हैं, उसको हल्के से पत्तों से ढक देते हैं, दूसरी तरफ वो पेपर की हथनी बना के खड़ी कर देते हैं, पीछे से वो हथनी की आवाज निकालता है, आदमी भाई वही शिकारी, हाथी उस तरफ भागा चला आता, वो खड्डे में गिर जाता है और फिर ऊपर तो आ नहीं सकता, खड्डा काफी डीप होता है, इस तरह से हाथी को ट्रैप करके उसके दांत निकाल लेते हैं। अब देखो उसकी कमजोरी है वासना, उसके कारण उसकी जीवन लीला खत्म हो जाती है। अब दांत वैसे तो निकालने नहीं देगा, जब तक मारेंगे नहीं दांत नहीं निकलेंगे, या उसको बेहोश करेंगे कुछ भी, तो इस तरह से उसका अपना कितना नुकसान हो जाता है। तीसरा होता है पतंगा, रंग मतंग पतंग, पतंगा होता है, बरसात में आप देखते हो लाइट में जो पोल होते हैं उनके ऊपर जो लाइट लगी होती, कितने पतंगे उसके ऊपर
उड़ते हैं
और उसको टकरा टकरा के उसके साथ लाइट के साथ जल के मर जाते हैं, सुबह देखो ढेर लगा होता है। तो उसमें देखो उसकी लीला भी बस एक रात की होती है, बस उस रात में वो खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है पतंगा देखो जहाज की तरह जो फूलों के ऊपर उड़ता है, मंडराता है, फूलों का रस चूसता है, रस चूसता रहता है, उसको पता नहीं चलता, रात को एक बार कमल के फूल पे ऊपर जाके बैठ जाता है, कमल का फूल रात को बंद हो जाता है, जैसे सूर्य छिपता है वो कमल का फूल बंद हो जाता है। तो रात को जानवर पानी पीने आते हैं, तो हाथी जैसे आया तो उसने उसको फूल अच्छा लगा, उसने फूल को तोड़ के मुंह में डाल लिया। उसने वैसे सोचा था कि चलो रात आज यही इसी में गुजार लेते हैं, दिल किया बाहर निकलेगा, मैं तो पत्थर भी काट सकता हूँ, मैं तो लकड़ काट सकता हूँ, निकल जाता हूँ, तो मेरे लिए ये क्या मुश्किल है। लेकिन वो मौका ही नहीं आया, हाथी ने फूल का पकड़ा, मुंह में डाल लिया, उसकी लीला खत्म हो गई। ऐसे इनकी छोटी कमजोरियों के पीछे। तो एक मछली होती है जैसे फिश, जो मीन कहते हैं फिश को, मछली को
जी।
मछली देखो एक छोटे से आटे के दाने के पीछे या छोटे से एक मांस के टुकड़े के पीछे लगा के पानी में फेंकते हैं, उस जाल में फंस जाती है, उसकी भी जीवन लीला खत्म हो जाती है।
ये बात बहुत आपने खूबसूरत बता रहे हैं। ये सभी एग्जांपल्स के थ्रू मैं यही समझ पा रही हूँ कि कुछ हमारे ऐसी कमजोरियाँ होती हैं ह्यूमंस के अंदर में भी, हम मनुष्यों के अंदर में भी,
बिल्कुल,
जिसकी वजह से हम जिंदगी में गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। जैसे कि कुछ कुछ लोगों को एडिक्शंस होता है,
बिल्कुल,
कुछ लोगों को सोशलाइज होने का, ज्यादा सोशलाइज होने का एडिक्शन होता है, कुछ लोगों को व्यसनों का एडिक्शन होता है, कुछ लोगों को अलग अलग तरह के एडिक्शंस के थ्रू वो जिंदगी को सिंप्लीफाई करने की जगह और ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो इन एग्जांपल्स के थ्रू आई थिंक ये बहुत क्लियर हो गया है, हमें रियलाइज़ हो रहा है कि जिंदगी में संयम में रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्रदा, अब मैं जानना चाहती हूँ कि पहले के ज़माने में जो लोगों ने तय किया था कि ये है संस्कार या ये है सही जीवन जीने की कला, उन चीजों को किस हद तक हमें अभी फॉलो करने की जरूरत है? क्योंकि मुझे लगता है कि आई डोंट नो, मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स के लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो कहते हैं ये तो पुरानी बातें, ये तो पिछड़ेवादी वाली बातें हैं, हम इन्हें क्यों फॉलो करें, हम अपने रूल्स खुद सेट करेंगे। तो ये थॉट प्रोसेस के बारे में आपका क्या कहना है?
देखो, अपने रूल सेट करेंगे, देखो कुछ जो बुजुर्गों ने जो रूल नियम मर्यादाएं बनाई हैं वो बहुत सोच समझ के बनाई है। आज दुनिया वेस्टर्नाइजेशन की तरफ भाग रही है,
करेक्ट,
दूसरों को कॉपी कर रही है। और अब हमारा भारतीय कल्चर सबसे रिच कल्चर माना गया, रिचेस्ट राधर, तो इसमें जो नियम और मर्यादाएं बनी है वो इंसान को बहुत ऊपर उठाने वाली है। और इन रूल मर्यादाओं को वेस्टर्न वाले फॉलो करते हैं तभी तो वो ऊपर जाते हैं,
करेक्ट।
तो हम अपनी कल्चर को छोड़ के हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी ये हमने देखा गया, जैसे विदेश में भी जाते रहते हैं तो विदेश में मैंने देखा कि एक जगह पे पर्टिकुलर उन्होंने कहा कि आप हमें इंडियन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर टॉक करें। मैंने कहा टॉपिक तो मेरा डिफरेंट है, व्हाई डू यू वांट मी टू टॉक ऑन इंडियन एस्ट्रोलॉजी। वो कहते हम एस्ट्रोलॉजर हैं बट वी आर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स।
ओके,
बट हम जानते हैं कि जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत एक्यूरेट है और बहुत ही उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। हमें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो वी वांट टू नो मोर अबाउट एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी क्वालिफाइड था तो उन्होंने मेरा लिखा हुआ देख लिया बायोडाटा में दैट आई एम क्वालिफाइड ज्योतिष विशारद, तो दे वांटेड टू टॉक मी ऑन दिस टॉपिक, आप उस पर बोले। तो उसमें बोले तो वो मैं समझ गया कोई बट दे वांट, उनको क्या चाहिए, वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में जो एक्यूरेसी है वो कहाँ से आती है। तो ठीक है, जो साइंटिस्ट ने आपने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बनाई है उन्होंने भी कुछ सोच के बनाई है, उन्होंने रिसर्च की, आप उनकी रिसर्च को देखो। हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक में हमारे वेदों में लिखी गई है, और वो इट इज मून बेस्ड, चंद्रमा बेस्ड है, वो सन बेस्ड है, ये फर्क है थोड़ा सा। तो वो हमें फॉलो करते हैं, हमारी वैल्यूज को फॉलो करते हैं, हमारे कल्चर को फॉलो करते हैं, हम अपना कल्चर छोड़ के उनकी तरफ जा रहे हैं।
करेक्ट,
तो यही कारण है कि जब वो अपने उसको कहते हैं हम बेसिकली हम मन मत, अपने मन की मत बनाई हुई
जी।
एक होती है श्रीमत, श्रीमत होती है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मत जो हमारी वैल्यूज के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बनी हुई है। तो हमें किसको फॉलो करना है, अपनी मत को फॉलो करना है, जहाँ जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, बहुत सेंट्स ने, संतों ने, बड़े बड़े महर्षियों ने हमारे लिए जो मर्यादाएं सेट की तो वो अच्छी है। हम उनको कम्युनिकेशन गैप या टाइम गैप या उसको बड़ा कुछ बोल देते हैं, बट वैल्यूज देखो, लाइफ कितनी सुखी थी। अब आज से 60 साल पहले, मेरी उम्र 67 है, तो 60 साल पहले मेरे को जो जहां तक याद है थोड़ा बहुत, कितनी वैल्यूज थी, हम कभी क्राइम सुनते ही नहीं थे कितना, कभी न्यूज, कभी ऐसी क्राइम वाली न्यूज नहीं देखी थी ना सुनी थी, लेकिन आज देखो कहां तक क्राइम रेट कितना बढ़ गया है। 60 साल बाद इंसान के अंदर वैल्यूज में आज देखते हैं डिग्रेडेशन कितनी हो गई है। आज जो सोसाइटी में यंग जनरेशन में जो देख रहे हैं वो देख के शर्म से सर झुकता है। सारे नहीं मैं कहता, लेकिन कुछ 50% से ज्यादा लोग, बच्चे ऐसे आज की यंग जनरेशन है जो बहुत गलत रास्ते पर चल रही है और वो देश का भविष्य है और उनको वैल्यूज एग्जाम्पल बनना है अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए। जैसे हमारे या बुजुर्ग थे वो वैल्यूज के ऊपर इतना चलते थे, हमारे लिए आदर्श थे वो, हम आज भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो कुछ वैल्यूज तभी पुराने लोगों में अभी भी बची हुई है, यंग जनरेशन तो देयर लैकिंग ऑल दोस वैल्यूज।
करेक्ट ब्रदर, ऐसे कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड।
यस,
ये थॉट जो है ये बहुत ही यूनिक थॉट है, क्योंकि रियलिटी ये है कि जो पुरानी बातें होती हैं, जो पुराने बुजुर्ग हमें छोड़ कर गए, उन्होंने जो दायरे सेट किए, जो बाउंड्रीज सेट की, जो कल्चरल वैल्यू सेट किए, उसके साथ में हम आज भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई बार जो पेरेंट्स है और जो यंग जनरेशन है, इन दोनों के बीच में कल्चरल गैप इसी वजह से आता है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो उन वैल्यूज़ को कभी छोड़ते नहीं हैं और बच्चे जो हैं वो उन वैल्यूज़ को मानते नहीं हैं। इसकी वजह से कल्चरल गैप बहुत ज़्यादा होता है, और जो कहते हैं हम कि एज गैप हमारे बीच में है, ये जो थॉट है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी आते हैं और घर के अंदर तनाव का माहौल हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट भी करने लगते हैं। तो ऐसे में किस हद तक जरूरी है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी को अपनी जिंदगी में लाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मानती हूँ कि संयम में रहना जरूरी है, लेकिन संयम एक्सट्रीम लेवल पे रहना ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम है। फ्लेक्सिबिलिटी भी कितना जरूरी है।
जैसे इस आधुनिक युग में नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इवन ओल्ड पीपल आर आल्सो यूजिंग दैट, उसको यूज कर रहे हैं।
करेक्ट,
उसमें उसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि समय बचता है बहुत। तो जहां पे दे आर एक्सेप्टिंग टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, लेकिन न्यू जो विचार अच्छे हैं, जो मर्यादाओं के अंदर हैं, उसको सारे फॉलो करते हैं, सब लाइक करते हैं, लेकिन जहां लगता है कि ये मर्यादा से बाहर जाने वाली बात है, वो तो देखो सीता जी मर्यादा की लकीर से बाहर गए तो रावण उठा ले गया। तो यहां तक मर्यादाओं के अंदर रहने की बात है, इंसान को हमेशा मर्यादाओं के अंदर रहना बहुत जरूरी है। परिवर्तन कुदरत का नियम है, उसके मुताबिक बदलना हमें भी है, बुजुर्गों को भी बदलना है। आज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो बहुत खुश हैं जिन्होंने हर चीज को एक्सेप्ट किया है, लेकिन गलत चीजों को एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता। अब वैल्यूज जैसे डिग्रेड हो रही है उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ये तो विरुद्ध चलना ही होगा। समझाना होगा यूथ को, खुद मॉडल बन के, एक रोल मॉडल बन के उनके आगे आएंगे, जब हम खुद मर्यादा के अंदर रहेंगे तो बच्चे फॉलो करते हैं। हमने देखा है बच्चे बहुत फॉलो करते हैं, या अगर हम खुद ही गलत काम करेंगे तो बच्चे उसको देख के करेंगे। तो हमें फॉलो करेंगे बच्चे, तो हमने इसलिए उनके आगे एक रोल मॉडल, एक एग्जाम्पल बन के चलना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के चलना है, ताकि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली जनरेशन हमें फॉलो करे। एक को देख के, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, हमारा बच्चा अगर बिगड़ता तो पड़ोसी का ऑटोमेटिकली देख के बिगड़ेगा। लेकिन उनके भी अगर पेरेंट्स ने वैल्यूज को पूरा फॉलो किया है तो वो अपने बच्चे को कंट्रोल करेंगे, मर्यादा में रहना सिखाएंगे। सिखाना होता है, बच्चा तो एक प्लेन स्लेट है, उसके ऊपर जो आप सॉफ्टवेयर जो भर दोगे तो वही बाहर आएगा। तो अगर हम रॉन्ग सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं तो नेचुरली रिजल्ट विल बी रॉन्ग।
कई बार ऐसा होता है कि भले सिचुएशंस बहुत बुरे चल रहे हैं, शायद फाइनेंशियली मैं साउंड नहीं हूँ, या मेरे घर में तनाव का माहौल है, या ऑफिस में प्रेशर है, या इंटरनली मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो कई बार हम हताश हो जाते हैं और कई बार हम फ्लेक्सिबिलिटी को ज़िंदगी का हिस्सा लेते हैं, जैसे टेम्पररी बेसिस के लिए खुशी ढूंढना, उसके लिए हम गलत संगत में जाते हैं, उसके लिए हम नशा लेते हैं, उसके लिए हम अपनी वैल्यूज़ को स्टेक पर डाल देते हैं, कई बार चोरी कर लेते हैं क्योंकि पैसे की कमी है। तो ये भी कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से हम अपनी वैल्यूज़ से, अपने मर्यादा से, अपने संयम से दूर जाते हैं। तो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से टैकल करें जिसकी वजह से हमें संयम, अर्थात जो हमारे वैल्यूज़ है या हमारे डिसिप्लिन है, उससे हम आगे ना, दायरे को क्रॉस ना करें।
इसमें हमें वैल्यूज़ को पब्लिक में, यंग जनरेशन में इनकलकेट करना होगा, उनको सिखाना होगा। मैं चंडीगढ़ में एक जुवेनाइल होम है, छोटे बच्चों की जेल जिसको कहते हैं, वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ। उन बच्चों को जब हम वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं तो दे आर सरप्राइज। वो पछताते हैं कि काश हमें जे क्राइम करने से पहले हमें इन वैल्यूज़ के बारे में पता चल जाता।
अच्छा।
तो हम क्राइम ना करते, क्योंकि हमारे पेरेंट्स खुद कर रहे हैं। बहुत सारे उसमें नशेड़ी होते हैं, वो कहते हैं हमारे पेरेंट्स खुद नशा कर रहे हैं। दे आर फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड, कॉलोनीज होती है ना, पुअर कॉलोनीज, सारे 99% वहां से आते हैं। वो सारे क्राइम वाले फाइनेंशियल क्रंच के कारण भी आते हैं, क्योंकि घरों में पैसा नहीं है। जो थोड़ा बहुत पैसा माँ बाप कमाते हैं, माँ कमाती है या कोई कर कमाता है, तो वो सारा नशों में खत्म कर देते हैं। और फिर वो फाइनेंशियली हमेशा टाइट ही रहते हैं। तो बच्चों को जब कुछ मिलता नहीं है तो दे रिजॉर्ट टू ऑल दोस थिंग्स। तो मैं तो ये पिछले 4 साल से 4.5 साल से ये सेवा कर रहा हूँ, देख रहा हूँ वहाँ पे। उनको जब ये वैल्यूज सिखाते हैं, उनको हम बताते हैं कि देखो तुमने कितना अपने परिवार को दुखी किया, सुखी तो नहीं किया। अब वो वकीलों के पास धक्के खा रहे हैं, पैसे खर्च रहे हैं, और बुरा भला सुनने को भी मिल रहा है सोसाइटी में। तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती हो रही है, इनका बेटा ऐसा है, नशेड़ी है, जो है, स्नैचर है, फलाना। तो उनकी कितनी इंसल्ट होती है सोसाइटी में, आपकी कॉलोनी में देख रहा हूँ उनकी क्या इज्जत है। कहते हैं हाँ वाकई बहुत रोते हैं आके कि आपने हमारा नाम बदनाम कर दिया। जो हम अंदर करते थे, जो हमारे इंटरनल था, हम जो भी करते थे गलत, दैट वाज इंटरनल, नॉट नोन टू पब्लिक, किसी को पता नहीं था। लेकिन अब तो सारा कुछ सामने आ गया, ओपन हो गया। तो वो कहते हम भी रोते हैं, जब पेरेंट्स आके रोते हैं तो हमें भी रोना आता है। तो वो कहते हैं जब आप आते हो तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं उनको वैल्यूज ऐसे सिखाता हूँ कुछ शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू। जैसे बच्चों का नजरिए की आपने बात की, तो बच्चों के नजरिए को इस तरह से मैं मतलब उनको सिखाया कि देखो नजरिया अपना अपना है। दो गिलास में पानी रखा, एक में भर के रखा पानी, एक में भर के रखी ड्रिंक। तो दो पतंगे पकड़ के लाए, एक पानी में डाल दिया, एक ड्रिंक में डाल दिया। तो बच्चों के सामने क्लास में रख दिया, तो जो पतंगा पानी वाला था तो पानी पिया, उड़ गया। जिसमें ड्रिंक थी उसमें पतंगा थोड़ी देर बाद छटपटा के मर गया।
यही है।
तो बच्चों से पूछा, बच्चों इसका मतलब बताओ क्या हुआ। तो एक बच्चे ने फटाफट हाथ खड़ा किया, मैं बताऊं सर। कहता हाँ जी बताओ। कहता जी दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं।
कितनी तो बड़ी बात है।
उसने ऐसा मीनिंग लिया, ये नहीं सोचा कि पतंगा मर सकता है, इंसान भी इसको पीने से मर सकता है।
ये सिर्फ पर्सपेक्टिव की बात है। ये बात में आपकी इतनी कन्विंसिंग है। और इसी बात के साथ आई थिंक हमें आज का समय की समाप्ति पर आ गए हैं हम। कहीं ना कहीं हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह से संयम में रहना, अर्थात डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने पिछले जनरेशन को, हमारे जो बुजुर्ग रह चुके हैं उनकी जनरेशन को, हमारी जनरेशन से टैली करके ये जानने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं बैलेंस जिंदगी का सबसे बड़ा नियम है। चाहे पहले की ट्रेडिशंस हो, चाहे अभी की ट्रेडिशंस हो, इन सभी के बीच में अगर बैलेंस क्रिएट करें हम और एक नई वैल्यूज क्रिएट करें जो हमें ज़िंदगी की दिशा दे और हमें सक्सेस की तरफ आगे बढ़ाए, तो कभी ज़िंदगी में तकलीफ तो आ ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि जो वैल्यूज़ हमें हमारे बुजुर्ग छोड़कर गए हैं, हमारे रास्ते तय कर गए हैं, कहीं ना कहीं हमें उन्हें साथ लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम अपनी वैल्यूज़ को बुज़ुर्गों की वैल्यूज़ के साथ मिक्स करके एक नई दिशा प्रदान करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उज्ज्वल भविष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी एक बहुत बड़ा गुण है दोस्तों। किसी भी चीज को ज्यादा पकड़ कर रखेंगे, अगर रेत को ज्यादा समय तक पकड़ कर रखेंगे तो वो मुट्ठी से बह जाएगा। उसी प्रकार फ्लेक्सिबिलिटी को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और देखिएगा कि आपकी जिंदगी एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ेगी। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।